بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ہی کی نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم اور کرم رحم کرنے والے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ہم نے تم کو کوثر عطا کر دی ہے, لہذا تم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقیناً جو تمہارا دشمن ہے اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے. اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے. کہتے ہیں کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر اتاری گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر اتاری گئی. قصہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ, یا آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ, یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بہت بچپن کے اندر انتقال ہو گیا. جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے, منافقوں نے خوشی منائی. خاص طور پر عاص ابن وائل نام کا ایک کافر دشمن, اس نے بہت خوشیاں منائی, منافقوں نے خوشیاں منائی. کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا, اب ان کا خاندان دنیا میں نہیں چلے گا, اور جب ان کا خاندان نہیں چلے گا تو نعوذ باللہ ان کا دین بھی آگے نہیں چلے گا, اور آپ کا لایا ہوا دین اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ بات سوچ کر کے انہوں نے بہت خوشیاں منائی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ سورت آسمان سے اتاری. بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ مدینہ کا ایک بہت بڑا یہودی جس کا نام کعب ابن اشرف تھا, وہ مکہ شریف گیا ہوا تھا, تو مکہ کے کافروں نے اس کو یوں کہا کہ دیکھو دیکھو ہمارے یہاں یہ محمد نام کے ایک نوجوان ہیں, وہ خود کو اور خود کے لائے ہوئے دین کو اچھا بتلاتے ہیں. حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. اس پر کعب ابن اشرف نے کہا کہ نہیں نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا نہیں ہے, بلکہ تم کافروں کا دین اور مذہب اچھا ہے. ایسی بات اس نے کہی. حالانکہ کعب ابن اشرف یہودی ہے, آسمانی کتاب تورات کا ماننے والا ہے, توحید کو ماننے والا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے محض سیاست میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ऐसा जवाब दे दिया कि तुम मक्का के काफिरों का दीन अच्छा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अच्छा नहीं है। उस पर अल्लाह ताला ने ये पाकीज़ा और मुबारक सूरत को नाजिल फरमाया। यहाँ एक बात जहन में रखे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बेटे थे उन बेटों का बचपन ही के अंदर इंतकाल हो गया, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे हुजूर को खातिमुन नबीयीन बनाया था, यानी तमाम नबियों को ख़त्म करने वाले। और पिछले ज़माने के अंदर ऐसा भी हुआ कि नबी की औलाद भी नबी होती है, अल्लाह नबी की औलाद को भी नबी बनाते हैं, इसीलिए हुजूर की कोई औलाद जिंदा नहीं रही कि उनके हुजूर के बाद नबी बनाया जावे। दूसरी बात ऐसी भी है कि मानने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मोहब्बत के अंदर हद से आगे निकल जाते हैं, गुलू करने लगते हैं, औलाद को बड़ा बनने के बाद कोई खिलाफत का या एक नाइब होने का कोई मसला और फितना खड़ा कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत की ये बात है अल्लाह के यहाँ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बेटे थे उन सब को बचपन में अल्लाह ने बुला लिया। खैर, ये तो एक हिकमत की बात हुई। इस सूरत के अंदर बहुत ही प्यारा मजमून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, उसमें सबसे छोटी सूरत ये सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर है। उसमें सिर्फ 14 कलिमात बताए जाते हैं और 42 यानी 40 और 2 हुरूफ शब्द हैं, सबसे छोटी सूरत है। यहाँ एक मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी की बात बतलाऊं, वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में कोई तकलीफ नहीं, इस्लाम बहुत आसान दीन है। उसकी एक खास एक मिसाल दूं मैं आपको, आप दिन रात की नमाजों पर गौर करो तो जो नमाजें फर्ज और वाजिब है वो तमाम नमाज आप देख लो तो ज्यादा से ज्यादा 3 रकात के अंदर किरात करना जरूरी है फर्ज और वाजिब में। जोहर, असर, ईशा की 4-4 रकात है तो उसमें पहली 2 रकात में किरात फर्ज है, मगरिब में 3, फजर में 2 तो उसकी 2 रकात में किरात फर्ज है, वितर की 3 रकात में किरात है। गर्ज ये कि ज्यादा से ज्यादा 3 रकात के अंदर यानी फर्ज और वाजिब नमाज में किरात जरूरी है, और अल्लाह ताला ने 3 छोटी छोटी सूरत उतार दी। ये इन्ना आतैना कल कौसर है, वल असर है, और कुल हो अल्लाह। कितना आसान दीन है कि अगर कोई आदमी 3 सूरतें याद कर ले और अल्हम्दो शरीफ, तो अभी उसके लिए फर्ज वाजिब को अदा करना तो बिल्कुल आसान हो जाए। इसीलिए कोई आदमी ये उजर नहीं कर सकता कि मुझे कुरान याद नहीं होता, याद नहीं रहता, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, गलत बात है। इसलिए दीनी भाइयों, जिनके पास जो है अभी तक कुरान का इल्म नहीं है, कुरान सीखा नहीं है, वो कम से कम ये छोटी छोटी 3 सूरतें अल्हम्दो शरीफ याद कर लें ताकि उसकी अपनी नमाजों का मसला हल हो जाए। फिर अखीरी सुपारे की अखीरी सूरतें, फिर कुरान, पूरा कुरान मजीद अल्लाह ताला आसान फरमावे। और सिर्फ 3 आयतें हैं इस सूरत में। सूर्य आदियात के बाद और सूर्य तकासुर से पहले 15 नंबर के ऊपर ये सूरत उतारी गई है और कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में 108 नंबर की ये सूरत है। और इस सूरत में शुरू ही में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर देने की बात कही गई, इन्ना आतैना कल कौसर। तो समझो कि ये कौसर है क्या चीज। कौसर के बारे में एक बात ये है कि उसका माना है बहुत ज्यादा भलाई, बहुत ज्यादा खैर। गोया के अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी भलाई अता फरमाई, आपको नबी बनाया, कुरान अता फरमाया, बहुत बड़ी उम्मत उम्मते मुहम्मदिया अता फरमाई, हिकमतें अता फरमाई, दीनी नेमतें अता फरमाई, दुनियावी नेमतें अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर और भलाइयों से मालामाल फरमाया। दूसरा माना कौसर का बड़ा मजेदार माना है, बहुत ध्यान से समझिए। कौसर का दूसरा माना है एक बहुत प्यारी प्यारी नहर, बहुत प्यारी बहुत उम्दा नहर। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर एक नहर बनाई है जिसका नाम है कौसर, और एक हौज भी है, उस हौज का नाम भी कौसर है, और वो हौज के कयामत के मैदान में होगा। और ये हौज चौकोर है, चौरस है, स्क्वायर है। तो गोया के कौसर जन्नत में एक नहर भी है और कयामत के मैदान के अंदर हौस का भी नाम है। और उसकी शक्ल ऐसी है कि जन्नत में जो कौसर नहर है उसी में से दो परनाले यानी पानी के पाइप आते हैं और उसके जरिए से कयामत के मैदान में जो हौज है उसमें पानी गिरता है। ये जो दो परनाले पानी गिरने के, पानी लाने के हैं, एक चांदी का है और दूसरा सोने का है। और जन्नत की वो नहर में से कयामत के मैदान के अंदर वो पानी आ रहा होगा और पूरा हौज भरा हुआ होगा। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरानी हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से अपनी उम्मत को इस हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे और खुश नसीब लोगों को अल्लाह ताला जो है उस नहर का पानी अता करेंगे। अल्लाह हम सब को भी ये दौलत अता फरमा दे रहे। हदीस में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुबारक नहर दिखलाई। अल्लाह अल्लाह कैसी प्यारी मुबारक नहर दिखलाई। और जिब्राइल अमीन ने हुजूर को अर्ज किया, ये वही कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। मुसलमान भाइयों, इस नहर के बारे में मैं आगे चलकर और तफसीर इंशाल्लाह बतलाऊंगा। एक बात पॉइंट की मैं आपको बतला दूं, इस कौसर की नहर, कौसर के हौज में कितना प्यारा पानी होगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी और कमाल ये है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और नूरानी हाथों से वो पानी पीने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में कोई बुजुर्ग कोई अल्लाह वाले हमको खाली पानी पिला दे तो दूसरों के यहाँ फालूदा पीने से भी ज्यादा हम उस पानी को समझते हैं। तो ये तो हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे प्यारे नूरानी हाथों से हौज कौसर का पानी पिलाएंगे। ओहो कितनी बड़ी खुशनसीबी होगी। और पानी के अंदर जो खूबियां हैं वो खूबियां अपनी जगह के ऊपर है। और اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين। एक माना ये है कौसर का औलाद का ज्यादा होना। लिहाजा इन्ना आतैना कल कौसर का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा औलाद अता फरमाई। अब समझो कि बहुत ज्यादा औलाद का मतलब क्या है। अभी तो आपने सुन लिया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहे, सब बेटों का इंतकाल हो गया। लेकिन आपकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमतु जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दो लाडले बेटे हजरत हसन और हुसैन की औलाद, जिनको हम सईद कहते हैं, सादात कहते हैं, हसनी सईद हुसैनी सईद, ये पूरी दुनिया के अंदर इनकी तादाद बहुत बड़ी है। आज पूरी दुनिया में चले जाओ, हर जगह आपको सईद मिलेंगे, सादात मिलेंगे आपको। ये कोई मामूली बात है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा की औलाद पूरी दुनिया के अंदर आपको मिलेगी, हसनी सैयद हुसैनी सैयद, ये कितनी बड़ी बात हो गई अल्लाह सुबहानहु व ताला की तरफ से। दूसरा मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद, मजाजी औलाद, यानी जो आपके खानदान से नहीं है, आपकी फैमिली से नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मती होने का जो एक रूहानी रिश्ता है, मुबारक रिश्ता है, पाकीजा रिश्ता है, उस एतबार से हुजूर की औलाद। तो समझो कि हुजूर पूरी उम्मत के रूहानी बाप हुए, रूहानी अब्बा जान हुए, और पूरी उम्मत आपकी रूहानी औलाद हुई। और उसी की तरफ एक लतीफ इशारा कुरान के आयत से निकलता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। इसमें कहा गया कि किसी मर्द, कामिल मर्द के हुजूर हकीकी नसबी अब्बा नहीं है। इससे एक लतीफ बारीक इशारा यह निकला कि आपकी पूरी उम्मत आपकी रूहानी औलाद है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी तादाद आपकी रूहानी उम्मत की। तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस में, अहलुल जन्नति मिअतु व इशरून सफ्फन लकुम मिन्हा समानून सफ्फन। कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों को सफों में खड़ा किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, जैसे नमाज की सफे होती है ऐसे जन्नत में जाने वालों की सफ होगी, और कितनी बड़ी होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब ध्यान से सुनिए, हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों की उम्मत में से जितने भी लोग जन्नत में जाने वाले हैं उनको अल्लाह ताला 120 सफों में खड़ा करेंगे और जन्नत में भेजेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लकुम मिन्हा समानून सफ्फन, सुभान अल्लाह, उसमें से दो तिहाई, 2/3, यानी 80 सफे, 80 सफ, ये उम्मते मुहम्मदिया के लिए रिजर्व होगी। अंदाजा लगाओ मुसलमान भाइयों, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल में हमको कितनी बड़ी चीज मिली कि तमाम नबियों की उम्मत की सिर्फ 40 सफ होगी और अकेली उम्मते मुहम्मदिया के लिए 80 सफे होगी। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी तादाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी उम्मत की। एक और मतलब ये है कि हौज़े कौसर का मतलब है इल्म, नॉलेज, विद्या। कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया और हुजूर की उम्मत को भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी बात फरमाई, यतीमे के ना कर द कुरआन दुरुस्त, कुतुब खान ए चंद मिल्लत बुशुश। एक यतीम बच्चा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने किसी मकतब में जाकर बाकायदा तालीम भी हासिल नहीं की, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा इल्म अता किया कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जो किताबें हैं और बड़े बड़े इल्म वाले, वो भी हुजूर के इल्म की बराबरी नहीं कर सकते, उसके बराबर हो ही नहीं सकते। इतना बड़ा इल्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाया। देखो मैं आपको कहूं, कुरान की जो छोटी छोटी सूरतें हैं, इनमें से जैसे कि जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है कि जुमा की नमाज में सूरे सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पहली रकात में और सूरे गाशिया अलता का हदीसुल गाशिया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सूरे जुमा और मुनाफिकुन भी पढ़ते थे। अब इसी सूरत में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना हाज़ा लफी सुहुफ़ अल-ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। हजरत मूसा और इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने किताबें अता फरमाई, उसके इल्म का खुलासा अल्लाह ने इन सूरतों में बयान कर दिया। तो जब कुरान की सूरतें ऐसी है कि उसमें पिछली उम्मतों को जो किताबें दी गई थी उसका खुलासा कुरान की एक एक सूरत में आ गया, तो फिर कुरान का इल्म कितना बड़ा, हुजूर का इल्म कितना बड़ा। तो ये भी एक कौसर का मतलब लिया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और आपके तुफेल में आपकी उम्मत को भी बड़ा इल्म दिया गया। एक हदीस सुनाऊं मैं आपको, मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में बैठे हुए तशरीफ रखे, इतने में एक बेहोशी जैसी कुछ कैफियत हुजूर को हो गई। आम तौर पर कुरान उतरते वक्त के ऊपर ऐसी बेहोशी होती थी, जब बेहोशी दूर हो गई तो हुजूर मुस्कुराने लगे। वाह क्या मुस्कुराहट होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिस्मिल शाहजहांपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे जामिया दाभेल के सालाना जलसे में एक मर्तबा दो मिसरे सुनाए थे, उनके हुस्न का आलम ए नदीम क्या होगा, जन्नतें सवरती है जिनके मुस्कुराने से। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के लिए, उनके हुस्न का आलम ए नदीम क्या होगा, जन्नतें सवरती है जिनके मुस्कुराने से। बिस्मिल साहब अपने लिए कहते थे, उनके हुस्न का आलम ए बिस्मिल क्या होगा, जन्नतें सवरती है जिनके मुस्कुराने से। तमन्ना है कि ए दिल कोई नसीमे कुए यार आए, यानी मदीना की गलियों से कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए। तमन्ना है कि ए दिल कोई नसीमे कुए यार आए, क कली चटके, चमन महके, शजर झूमे, बहार आए। तो ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना मुबारक। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर बेदार हुए, मुस्कुराने लगे। हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अल्लाह ताला ने मुझ पर एक सूरत उतारी। फिर हुजूर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ के पूरी सूरत सुनाई। फिर खुद हुजूर ने हमको सवाल किया, अरे जानते हो ये कौसर क्या है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कौसर का मतलब बतलाया, जिसमें जन्नत की नहर बतलाई, और उसमें ये भी फरमाया कि कयामत के दिन जब कौसर वाले होश पर मैं खड़े होकर के अपनी उम्मत को पानी पिला रहा होऊंगा, तो बाज लोगों को फरिश्ते हटा रहे होंगे। मैं अर्ज करूंगा, ये फरिश्तों, ये मेरा उम्मती है, इनको आने दो। तो इरशाद होगा, कहा जाएगा कि इन्होंने आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद दीन में नई नई बातें शुरू कर दी थी, जिसको हम बिदअत कहते हैं, रुसूमात कहते हैं। ऐसी चीजों से अपने आप को बचाओ, वरना कयामत के दिन नूरानी हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीने से फरिश्ते रोक देंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, सुन्नत की मोहब्बत और इत्तिबा की दौलत से मालामाल फरमावे। और आज सारी दुनिया देख रही है कि वो आस इब्ने वाइल और जो दुश्मन थे हुजूर के, वो सबका नामो निशान मिट के खत्म हो गया, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने वाले, हुजूर की सुन्नत पर चलने वाले, हुजूर के नाम पर अपने आप को हर तरह कुर्बान करने वाले पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर मौजूद है। बल्कि मैं आपको अजीब बात बतला, पूरी दुनिया में सूरज निकलने और डूबने का जो टाइम टेबल है उसके ऊपर आप जरा ध्यान दो, तो पूरी दुनिया में हर वक्त हर मिनट अजान हो रही है 24 घंटे में। यानी पूरी दुनिया का 24 घंटे का सिस्टम आप देखो तो हर वक्त दुनिया में किसी न किसी जगह के ऊपर अजान हो रही है। और अजान के अंदर क्या है? अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में 24 घंटे कहीं न कहीं हुजूर का नाम मुबारक जो है बुलंद हो रहा है। आपके जमजमे हर जगह हर लम्हा, अर्श पर आपके जमजमे, फर्श पर आपके हमहमे, सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मदिन अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन। और आखिरत में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता करेंगे, जहां बैठ करके हुजूर सिफारिश करेंगे। कितना बड़ा ऊंचा मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कयामत के दिन अता फरमाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी यकीनन हमने तुमको कौसर जैसी नेमत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। आगे फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। क्या मतलब नमाज पढ़ने का? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला नुमा फरमाते हैं कि इससे 5 वक्त की फर्ज नमाज मुराद है। और हजरत अनस रदी अल्लाहु ताला अन्हो से ये रिवायत है कि उससे बकरी ईद की नमाज मुराद है, ईद उल अदहा कुर्बानी की ईद की नमाज मुराद है। और ऐसा भी रिवायत में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के आने के बाद तरतीब ये बना ली कि पहले हुजूर ईद की नमाज पढ़ते थे और उसके बाद कुर्बानी करते थे। और पूरी उम्मत के लिए यही अमल है कि पहले ईद की नमाज पढ़े और उसके बाद कुर्बानी करे। अलबत्ता जिन गांवों में छोटी छोटी बस्तियों में ईद की नमाज नहीं होती है शरी मसले के एतबार से, वो लोग ईद के दिन सुबह सादिक के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, उनके लिए जायज है। बाकी जहां भी ईद की नमाज होती है उनके लिए ये तरतीब है कि पहले नमाज पढ़ो बाद में कुर्बानी करो। और फसल्ली और वनहर अम्र यानी ऑर्डर है अरबी ग्रामर में, इसीलिए हमारे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिया कि इससे मालूम हुआ कि ईद की नमाज वाजिब है और हैसियत वाले के लिए कुर्बानी भी वाजिब है। देखिए अल्लाह सुबहानहू व तआला की शान कि जब अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई कौसर जैसी, तो शुक्र भी बहुत बड़ा कि नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, नेमत बड़ी तो शुक्र भी बहुत बड़ा। इसीलिए हर नेमत वाले को ये सोचना चाहिए कि हम शुक्र भी बहुत बड़ा करने वाले बने। और दूसरी बात ये है कि नमाज ये बॉडी के जरिए बदन के जरिए होने वाली इबादत है और कुर्बानी माल के जरिए होने वाली इबादत है, तो हमको अपने बदन के जरिए से भी अल्लाह की इबादत करनी और माल के जरिए से भी अल्लाह ताला की इबादत करनी। वाह वाह, इस वक्त कितना अच्छा मौका है कि भाई बदन से भी इबादत करो, नमाज पढ़ो, तिलावत करो, तस्बीह पढ़ो, और माल के जरिए गरीबों को, मिस्कीनों को, भूखों को खिलाओ पिलाओ, उनकी खिदमत करो। और देखिए कुर्बानी में क्या चीज होती है, अल्लाह के नाम के ऊपर जानवर को कुर्बान किया जाता है। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब और धर्म में कुर्बानी बलि चढ़ाना ये है आम रिवाज है, लेकिन हम जो कुर्बानी करेंगे वो अल्लाह ताला के मुबारक नाम से कुर्बानी करेंगे। और यही चीज अल्लाह ने कुरान में हमको सिखलाई, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐलान कर दो ए नबी कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरी हज, मेरा जीना मरना सब एक अल्लाह ताला के लिए होगा। वाह वाह, कितने मेहरबान अल्लाह सुबहानहु व ताला के उस अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और मुबारक नाम पर अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करने की तौफीक। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां हुई, पहली बेटी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाहु ताला अन्हा, ये हुजूर की सबसे बड़ी बेटी है। आपकी दूसरी बेटी का नाम हजरत रुकैया रदी अल्लाहु ताला अन्हा है। फिर हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाहु ताला अन्हा है। और चौथी बेटी हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को ये खुश नसीबी हासिल है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरना शुरू हुआ, आपके नबी होने का ऐलान हुआ, उसके बाद हजरत फातिमा की पैदाइश हुई। कुरान उतरना शुरू हुआ उसका करीबन एक साल हो गया, फिर हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश हुई। आपके बेटों में एक बेटे का नाम है हजरत कासिम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे हैं। दूसरे बेटे आपके हजरत अब्दुल्लाह है, ये अब्दुल्लाह इनकी भी पैदाइश نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا, آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا, اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. ایک بیٹے آپ کے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے, اور حضور کے بڑے دادا جان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ الگ ہے, دونوں میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہم جب بقیع قبرستان جاتے ہیں, اللہ تعالی خوشی خوشی عافیت سے ہم سب کو مکہ مدینہ لے جاوے, تو بقیع قبرستان میں داخل ہو کر جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر حضرت ابراہیم کی قبر آتے ہیں. یہ تین نام تو میں نے آپ کو بتلا دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں, ایک حضرت قاسم, دوسرے حضرت عبداللہ, تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام طیب تھا اور ایک اور بیٹے جن کا نام طاہر تھا. تو اگر طیب اور طاہر کو ملا دیوے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ لڑکے ہو گئے. ایک حضرت قاسم, دوسرے حضرت عبداللہ, تیسرے حضرت ابراہیم, چوتھے حضرت طیب, پانچویں حضرت طاہر رضی اللہ عنہم. سیرت لکھنے والے بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ طیب اور طاہر ایک ہی بیٹے کے دو نام ہیں, ایک نام ایک لقب. اگر دونوں کو ایک مان لیوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے ہوئے, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم اور حضرت طاہر طیب, چار بیٹے ہو گئے. بعض حضرات سیرت لکھنے والے یوں کہتے ہیں کہ طیب, طاہر اور عبداللہ تینوں ایک ہی ہے, کہ جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ انہی کا ایک لقب طیب ہے, ایک لقب طاہر ہے. اس حساب سے دیکھنے جاؤ تو تین بیٹے ہو گئے, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ جن کا دوسرا نام طیب, تیسرا نام طاہر, اور تیسرے بیٹے ہو گئے حضرت ابراہیم. تو پانچ یا چار یا تین بیٹے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. لیکن جیسا کہ کل آپ نے سن لیا کہ آپ کے کوئی بیٹے بڑی عمر نہیں ہوئی, سب کا بچپن میں انتقال ہو گیا, تو دشمنوں نے بڑی خوشیاں منائی. اللہ تعالی نے اس پر یہ سورہ کوثر اتاری اور فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی, لہذا اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو. میں ایک اہم بات اس موقع پر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. اگر دشمنوں کی سازش दुश्मनों की प्लानिंग को नाकाम करना हो, फेल कर देना हो, मुअत्तल और बेकार कर देना हो, तो उसका बेहतरीन जरिया ये है कि नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये इस आयत करीमा से बेहतरीन मफहूम निकलता है, मतलब निकलता है कि कोई आदमी आपका विरोधी बन जावे, मुखालिफ बन जावे, आपकी दुश्मनी कर रहा है, तो कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो। उसकी पाबंदी करने से अल्लाह ताला दुश्मन को नाकाम कर देंगे। और कुरान की एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ईमान वालो, सबर सहन करो और नमाज पढ़ो और अल्लाह की मदद मांगो। अल्लाह की मदद मांगने के दो बेहतरीन जरिए हैं, एक सबर सहन करना और दूसरा नमाज पढ़ना। इसीलिए मैं आपको नमाज के जरिए कैसे अल्लाह की मदद मांगने की, उस पर एक दो खास बातें बतलाता हूं। पहली बात, मस्जिद में फर्ज नमाज की अजान होती है, फिर जब जमात का वक्त आए और जमात खड़ी होती है तो इकामत कही जाती है। हदीस में आता है कि अजान और इकामत के दरमियान में दुआएं कबूल होती है। सुभान अल्लाह। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जोहर में चार रकात सुन्नत पढ़ेंगे, अभी जोहर का वक्त आएगा इंशाअल्लाह, तो अजान के बाद सुन्नतें पढ़ी, जमात खड़ी होने में थोड़ी सी देर है, तो आप जो है दुआ में लग जाओ। अजान और इकामत के बीच में दुआ कबूल होती है। दूसरी बात, हदीस में आता है कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता है। तो तहज्जुद और फर्ज नमाज के बाद मांगी हुई दुआएं अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। इसीलिए फर्ज नमाज पढ़ो और उसके बाद दुआ करो, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेंगे। और एक खास बतला रहा हूं मैं आपको, सलातुल हाजत। सलातुल हाजत का क्या मतलब? कोई बड़ी हाजत आ गई, कोई बड़ी जरूरत पेश आ गई, कोई खास इमरजेंसी मामला पेश आ गया, तो दो रकात नमाज पढ़ो, वो हाजत पूरी हो जावे इस नियत से, वो तकलीफ दूर हो जावे उस नियत से, उसको सलातुल हाजत कहते हैं। हाजत की नमाज, जरूरत पूरी करने की नमाज, तकलीफ दूर करवाने की नमाज, उसको सलातुल हाजत कहते हैं। अच्छी तरह वुजू करो, दो रकात नमाज पढ़ो, जो चाहे सूरत पढ़ो अंदर। लेकिन बाज बुजुर्गों ने ये बतलाया है कि सलातुल हाजा में पहली रकात में अलम नशरह पढ़ो अल्हम्दो के बाद, और दूसरी रकात में अल्हम्दो के बाद इजाजा नसरुल्लाह पढ़ो, या ये कि अल्हम्दो के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में अल्हम्दो के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, और नमाज से सलाम फिराने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगो। ये दुआ हदीस शरीफ के अंदर आई है, दो अलग अलग दुआ है। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला व अंत तजअलुल हजन सहलन इदा शीत। ए अल्लाह, आसान काम तो वही है जो आपने आसान कर दिया, और आप मुश्किल चीज को जब चाहे तब आसान कर सकते हैं। एक दुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बतलाई, इसके जरिए से भी काम आसान हो जाएंगे। दूसरी दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुक मुजिबाति रहमतिक وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. ये दुआ तिर्मिजी शरीफ में आई, कितनी प्यारी दुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, अल्लाह ताला जो बड़े बुजुर्गी वाले हैं, बड़े बुर्दबार हिल्म वाले हैं, उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अजीम, अल्लाह ताला जो बड़े अजीम अर्श के मालिक है, मैं उनकी तस्बीह पढ़ता हूँ, पाकी बयान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ व खान अल्लाह ताला ही के लिए है जो तमाम आलमों दुनियाओं जगतों के मालिक है। अस्अलुक मुजीबाति रहमतिक, हे अल्लाह आपकी रहमत के असबाब के वास्ते से मैं सवाल करता हूँ। वज़ाइम मग़फ़िरतिक, और आपने जो पक्का इरादा किया है हमारी मग़फ़िरत का, उसके जरिए सवाल करता हूँ। वल गनीमत मिन कुल्ली बिर, और तमाम नेकियों की दौलत से मैं सवाल करता हूँ। वस्सलामत मिन कुल्ली इत्म, और तमाम बुराइयों से हिफाजत चाहता हूँ। ला तदाली जम्मन इल्ला गफरता, हे अल्लाह मेरा कोई भी गुनाह बाकी मत रखना, सब गुनाह बख्श देना। वला हम्मन इल्ला फरजता, और हे अल्लाह कोई भी फिकर गम होवे तो अल्लाह आप उसको दूर कर देना। वला हाजतन हिया लक रिदन इल्ला कदैतहा या अरहमर राहिमीन, और आपकी रजामंदी के कुबेल की कोई भी हाजत हो, ए अल्लाह मेरी हर हाजत को आप पूरा फरमा देना, ए सबसे बड़े मेहरबानी करने वाले मेरे अल्लाह। तो ये है दुआए हाजत, दो रकात नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह ताला उसकी बरकत से जो है मुश्किलात दूर कर देंगे, हाजत पूरी फरमा देंगे। तो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कोई भी अल्लाह का जिक्र थोड़ा करो, फिर दुरूद पढ़ो, फिर ये दुआ पढ़ो, या जल जलाल वल इकराम 3 बार पढ़ो, या रहमर रहीम 3 बार पढ़ो, दुआ के दरमियान भी दुरूद पढ़ो, आखिर में भी दुरूद पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेंगे। अब हौज़े कौसर के बारे में खास खास बातें मुझे बतलानी है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात में मैं जन्नत में चल रहा था। अल्लाहु अकबर, हुजूर को अल्लाह ने मेराज की रात में जन्नत भी दिखाई। अचानक मैंने देखा कि एक नहर है, उसके दोनों किनारों के ऊपर मोतियों के गुंबद बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ दरिया के किनारे के ऊपर वो कपड़े के या प्लास्टिक के टेंट जैसे बने होते हो ना, तो ये हुजूर ने जन्नत की नहर के किनारे के ऊपर मोतियों के गुंबद देखे। और मोती भी कैसे कि वन पीस, यानी एक मोती को तराश करके खोद करके उसमें से एक गुंबद बनाया गया। एक मोती कितना बड़ा होगा कि उसको खोद करके अंदर से एक गुंबद बनाया गया। तो मैंने पूछा, ए जिब्राइल ये क्या चीज है? तो उन जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि ये तो कौसर वाली नहर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, और उसके अंदर की जो मिट्टी है ना, यानी हमारी यहाँ भी नहर नदी होती है तो उसके नीचे मिट्टी होती है, तो कौसर नहर के नीचे की जो मिट्टी है ना वो तो मुश्क है, मुश्क, और वो भी एकदम तेज खुशबू वाली मुश्क है। अल्लाह अकबर, मुश्क जो असली होती है ना वो तकरीबन सोने और गोल्ड के भाव की होती है, और एक राई के दाने के बराबर हो असली मुश्क तो पूरे घर में खुशबू खुशबू रहे। ऐसी मिट्टी मुश्क की, उस पर ये हौज़े कौसर की नहर है। एक हदीस में फरमाया कि हौज़े कौसर कितनी बड़ी है, कि उस जमाना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना अंदाजा लगाओ कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरा हौज यानी मैदान कयामत में जो मेरा हौज है कौसर वाला, उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 1 महीना चाहिए। 1 महीना चलो तो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच सको, और उसके चारों साइड बराबर बराबर है। अंदाजा लगाओ कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 1 महीना लगे, इतना बड़ा यह हौज़े कौसर है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, और उसकी खुशबू मुश्क से भी ज्यादा है। और वहां पानी पीने के लिए किनारे पर लोटे रखे हुए हैं। कितने लोटे रखे हैं? जितने आसमान के सितारे हैं इतने लोटे वहां रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। हमारी यहाँ परब होती है, पानी की सबील होती है, तो उस पर 2-3 गिलास होते, वो भी प्लास्टिक के, वो भी कोई ले गया तो गए। और हौजे कौसर के ऊपर जो प्याले होंगे, पानी पीने के जो गिलास होंगे, वो इतने ज्यादा होंगे जितने आसमान के सितारे हैं। और जिसने उसमें से 1 मर्तबा पानी पिया तो जिंदगी भर कभी प्यास नहीं लगेगी, और जन्नत की जिंदगी तो हमेशा की है। तो हौज़े कौसर से कयामत के दिन 1 मर्तबा पानी पी लिया तो फिर कभी भी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। अब जन्नत में जाने के बाद भी बहुत सारी पीने की चीज है। وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, شراب طهور بھی ہے جنت میں. وَأَنْهَارُهُمْ مِنْ خَبَرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ, شراب کی نہر بھی ہے. وَأَنْهَارُهُمْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور دودھ کی بھی نہر ہے, ایسا دودھ کہ وہ پھٹے گا نہیں, کھٹا نہیں ہوگا, باسی نہیں ہوگا, بدبو نہیں آئے گی کبھی بھی. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى, اور بہترین پانی کی بھی نہریں ہیں جنت کے اندر. تو جنت میں جانے کے بعد شہد کی نہر سے پیو. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى, پیور ہنی, صاف ستھرا شہد, وہاں سے پیو, دودھ کی نہر سے پیو, شراب کی نہر سے پیو, پانی پیو, فروٹ کا جوس پیو, वो मजे के लिए होगा, टेस्ट के लिए, प्यास नहीं लगेगी जन्नत में. इसीलिए के हौज़े कौसर का पानी कयामत के मैदान में पी लिया, उसके बाद किसी को कोई प्यास नहीं लगेगी. एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर इतना लंबा चौड़ा है कि उसके दोनों किनारों के दरमियान का फासला, अंतर, डिस्टेंस ऐला से लेकर अदन तक है. ऐला फलस्तीन के अंदर एक शहर है, वहां पोर्ट भी है, बंदरगाह है, और अदन यमन के अंदर है. इतनी चौड़ाई होगी उस हौजे कौसर की, और जो है उस हौजे कौसर के ऊपर उम्मती लोग पानी पीने के लिए जाएंगे. अब सवाल ये है ने कि कयामत के मैदान के अंदर सारी उम्मतें होगी तो सब लोग पानी पीने के लिए दौड़ेंगे. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा और मैं उनको अपने हौज से पानी पिलाऊंगा. हुजूर अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? वुजू की बरकत से चेहरे रोशन होंगे, चमकते हुए होंगे. उम्मतियों ने दुनिया में नमाज पढ़ी, वुजू किया, तो उसकी बरकत से चेहरे चमकते होंगे, हाथ और पैर सफेद होंगे. उसकी बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को पहचान लेंगे। इसलिए मुसलमान भाइयों बहनों, पांच वक्त की नमाज पढ़ो, वुजू करो, उसकी बरकत से कयामत के दिन हमारे चेहरे चमकेंगे, हाथ पैर सफेद हो जाएंगे। आज दुनिया में लोग ब्यूटी पार्लर के चक्कर में पड़े हैं। मुसलमान का हकीकी और सच्चा ब्यूटी पार्लर तो नमाज का वुजू है। ये वुजू सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर अपना, वुजू खाना, वुजू करो एकदम सफाई हो जाएगी और कयामत के दिन चेहरा चमकेगा, हाथ पैर सफेद हो जाएंगे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के सितारों की तादाद और संख्या के बराबर ये सोने चांदी के प्याले हौज़े कौसर पर रखे हुए होंगे और हुजूर उसके जरिए से पानी पिलाएंगे। अल्लाह कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हम सबको हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमावे। अब एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। एक हदीस में बतलाया गया कि सबसे पहले कौन वहां पी आएगा, सबसे पहले कौन पानी पीने के लिए पहुंचेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहाजिरीन फुकरा, यानी जिन सहाबा ने हिजरत की और वो गरीब और फकीर थे, उन लोगों को सबसे पहले हौज़े कौसर पर पानी मिलेगा। तो पूछा किसी ने, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिजरत करने वाले फकीर सहाबा का हाल बतलाओ, उनकी क्या हालत, उनकी क्या निशानी। तो उन्होंने, हुजूर ने जो निशानी बतलाई वो निशानी ध्यान से सुनो और हो सके तो अपने अंदर ये निशानियां पैदा करने की कोशिश करो ताकि हम भी उनके जैसे हो जाए और कयामत के दिन अल्लाह अपने फजल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हमको भी इब्तिदाई मरहले में हौज़े कौसर का पानी मिल जाए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन लोग हैं, मुहाजिरीन फुकरा का दुनिया में जिनके सरों के बाल बिखरे हुए होते थे। बाल बिखरे हुए होने का क्या मतलब, यानी वो बेचारे ऐसे सीधे सादे भोले भाले कि बस उनके बाल ऐसे बिखरे हुए रह गए। अल्लाहु अकबर, आज तो मुसलमानों का कितना वक्त सर के बाल बनाने के चक्कर में लगता है। ये अलग अलग किस्म की जो स्टाइल आई है ना, कोई मुर्गे जैसी स्टाइल, कोई कबूतर जैसी स्टाइल, ये सब गलत स्टाइल है और उसके पीछे पैसे बर्बाद, वक्त बर्बाद और उसको संभाल संभाल के रखने के लिए सर पर मसा भी ठीक से नहीं करते, टोपी भी नहीं पहनते, ये सब गलत तरीका है। ये सहाबा की निशानी देखो, मुहाजिरीन फुकरा की, कि उनके सर के बाल बिखरे हुए हो। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबेई बुजुर्ग गुजरे। वो कहने लगे कि मैं कैसे उनमें शामिल होऊंगा। तो फिर इन्होंने ऐसा किया कि पहले बाल गुसल करके मसलन निकले, तो जब तक बाल सूख न जावे, बिखर न जावे, वहां तक वो बाल में तेल नहीं लगाते थे। थोड़ी देर ऐसा रहने देते थे, जब बिखरे हुए हो जाए, सूख जावे, फिर तेल इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हम भी कभी कभी इन सहाबा की नकल में इस तरह कर ले। दूसरी निशानी, भूख की वजह से और दीनी कामों में मेहनत और थकन की वजह से उनके चेहरे के ऊपर खुल्लम खुल्ली निशानी मालूम हो। भूख, मेहनत और थकन, और जाहिर बात है कि सहाबा की मेहनत और थकन दीनी कामों के लिए, हलाल कमाई के लिए, उसकी वजह से चेहरे से पता चल जावे। तीसरी निशानी, अगर किसी हाकिम के पास, सरकारी अफसरों के पास जावे, मिनिस्टर के पास जावे, तो कोई उनके लिए दरवाजा न खोले ऐसे, यानी बड़े लोगों के लिए ऑफिसों में दरवाजे खुलते हैं, छोटे लोगों को तो बाहर से ही निकाल दिया जाता है। नंबर चार, उम्दा औरतें उनके निकाह में कोई देता नहीं है, ऐसों को बिचारों को ऐसी मिलती जिसको कोई नहीं ले जावे, इसके साथ उसकी शादी हो जावे, कोई अच्छी औरत उनको नहीं देता। चौथी निशान, पांचवी निशानी, बहुत अहम निशानी है समझने की चीज, अगर उनके जिम्मे में किसी का हक होता है तो वो अदा कर देते हैं, और किसी से उनका हक लेना होता है तो वो पूरा नहीं लेते, अधूरा लेते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी की निशानी है। अगर खुद किसी को कोई हक अदा करना, मसलन 100 रुपये लिए 100 रुपये देना, पूरे 100 रुपये दे दिए, और किसी के पास 100 रुपये लेने के हो तो पूरे 100 नहीं लेते, 90 लेकर 10 माफ कर देते हैं, ये उनकी निशानी। सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी प्यारी इन लोगों की निशानी है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। मुसलमानों, अपने अंदर ये सिफात और खूबी पैदा करो। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये हदीस सुनी तो फरमाने लगे कि मेरे निकाह में तो अब्दुल मलिक इब्ने मरवान बड़े बादशाह की बेटी है, और मेरे लिए तो बादशाहों के दरवाजे भी खुल जाते हैं, तो मैं कैसे ऐसा होऊंगा। तो फिर उन्होंने जो है अपने बाल बिखरे हुए रखना शुरू किया, फिर बाद में वो तेल लगाते थे। बहरहाल इस हदीस में जो एक बात है ना अखीरी, वो बहुत अहम है, वो अपने अंदर पैदा करो कि अगर किसी का हक अदा करना हो तो पूरे पूरा दे दो, और किसी से हक लेने का हो, कर्ज लेने का हो तो कम लो, और थोड़ा बहुत माफ कर दो। यहीं पर रुक कर मैं एक अहम मसला आपको बयान कर दूं, फिर मजलिस मुकम्मल आज की। देखो, कर्ज बहुत अच्छी चीज है, कर्ज लेना मजबूरी के दर्जे में पड़ जावे, कोई बेचारा कर्ज लेने आ जावे तो उसको कर्ज दो, मजबूर को जितनी रकम आपने किसी को कर्ज दी तो रोजाना इतनी रकम सदका करने का अल्लाह ताला सवाब देंगे। लेकिन आज के जमाने के हालात के एतबार से एक मशवरा दे दो, किसी को इतना कर्ज दो कि अगर वो खा जावे, उड़ा देवे, नहीं वापिस देवे तो भी आपको तकलीफ न होवे इतना अपनी कैपेसिटी का कर्जा देने का। तो बहरहाल किसी को कर्ज दिया तो रोजाना इतनी रकम सदका करने का सवाब मिलेगा, और टाइम तय कर लेने को कि भाई कर्ज है 1 साल में देने का, 2 साल में देने का, 6 महीने में देने का, 1 महीने में देने का, टाइम फिक्स कर लेने का, ये जरूरी है। अब आपने टाइम फिक्स कर लिया कि एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 1 महीने का कर्ज है, 1 महीने के बाद वो बेचारा आया और कहता है कि मुझे कर्ज देना है लेकिन मेरे पास इंतजाम नहीं हुआ, सगवड़ नहीं हुई, पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम और दे दो, तो आप उसका टाइम बढ़ा दो। हदीस में आता है कि आपने टाइम बढ़ा दिया तो जिस दिन से टाइम बढ़ा दिया उस दिन से डबल सदका करने का अल्लाह ताला सवाब अता करेंगे। तो कर्ज का ये मसला हो गया, लेकिन इसमें खास बात बतलाऊं, पहले से बिल्कुल तय न हो, पहले से कोई शर्त न हो, पहले से बिल्कुल नक्की न किया जावे, और आप कर्ज चुकाते वक्त पर अपनी खुशी से ज्यादा दो तो ये सूद नहीं है, ये व्याज नहीं है, ये हलाल और जायज है। यानी आपने किसी से 1,000 रुपये कर्ज लिए, फिर आप कर्ज वापिस देने गए तो आपने खुशी से 100 रुपये ज्यादा दिए, 1,100 दिए, ये हलाल है, ये जायज है। तो पहले से शर्त नहीं, पहले से नक्की नहीं, पहले से तय नहीं, और अदा करते वह खुशी से मकरूज आदमी ज्यादा देवे तो ये जायज और हलाल है। अब बतलाओ इस मसले पर उम्मत अमल करने लगे तो लोग खुशी खुशी कर्ज देंगे कि नहीं देंगे। इसीलिए इस मसले को अमल में लाओ ताकि खुशी खुशी कर्ज भी मिल जावे।